हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति को उस लिफ्ट में दम घुटने लगा था। उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी। उस पर अर्णव की कल की बातें सीने में चुभन का एहसास पैदा कर रही थीं, और अब ये सब। धृति किसी तरह वहाँ खड़ी रही और लिफ्ट खुलते ही सबसे पहले बाहर निकल गई। वो भाग कर सीधे वॉशरूम में घुस गई। कुछ पल दरवाजे से लगकर खड़ी रही, उन सब की कही बातों के बारे में सोचती रही। फिर उसने दो चार बार अपने चेहरे पर पानी डाला, मुंह पोंछकर खुद को रिलैक्स करते हुए वहाँ से निकलकर अर्णव के केबिन की तरफ बढ़ गई। हर आगे बढ़ते कदम के साथ उस पर टिकी लोगों की नज़रों का एहसास हो रहा था, जो उसके मन को अंदर तक भेदती जा रही थीं। धृति अर्णव के केबिन के पास पहुंची ही थी कि माधुरी वहां पहुंच गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन में घुस गई। धृति पहले तो अचानक किसी के हाथ पकड़ने और खींचने से घबरा गई, पर फिर माधुरी को देखकर चुपचाप उसके साथ चली आई। माधुरी ने केबिन में आकर दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही धृति की तरफ पलटी, धृति ने आँखें बड़ी बड़ी करके उसे हैरानगी से सवाल किया, माधुरी तुम मुझे यहाँ ऐसे क्यों लेकर आई हो? धृति का सवाल सुनकर माधुरी उसके पास आई और गंभीरता से बोली, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कल क्या हुआ था। पूरे ऑफिस में बात जंगल में आग की तरह फैली हुई है कि सर कल आपको अपनी बाहों में उठाकर ऑफिस से बाहर ले गए थे और वापस अकेले लौटे थे। माधुरी काफी सीरियस लग रही थी। उसकी गंभीर निगाहें धृति पर टिकी थीं और उसे अपने जवाब का इंतजार था। जाहिर सी बात थी कि अर्णव और धृति का रिश्ता ऐसा तो नहीं था कि अर्णव को उस पर प्यार आ रहा हो, इसलिए वो उसे अपनी बाहों में उठाए घूम रहा हो। जिस कदर अर्णव को उससे नफरत है, उसका धृति को अपनी बाहों में उठाकर ले जाना शॉकिंग था और कई सवालों को जन्म दे रहा था, जिसके जवाब माधुरी धृति से चाहती थी। उसका सवाल सुनकर धृति को कल का अर्णव का व्यवहार याद आ गया। कैसे पहले अर्णव ने उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर भी उसे घर नहीं जाने दिया था, फिर बाद में सारी बात पता चलने पर कैसे उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले गया था, अपना कोट भी उसे दे दिया था और उसकी कंडीशन जानते हुए बिना अपनी गाड़ी की सीट के खराब होने की फिक्र किए उसे अपनी कार में बिठाकर घर ले गया था, कैसे उसकी परवाह कर रहा था, पर उस परवाह में भी उसकी नफरत झलकने लगी थी। धृति जवाब देने के बजाय अपने ही ख्यालों में गुम थी। अर्णव की बातों ने जहां उसके मन को बुरी तरह आहट किया था, वहीं उसके व्यवहार ने धृति को सोचने पर मजबूर कर दिया था। माधुरी कुछ पल जवाब का इंतजार करते हुए टकटकी लगाए धृति को देखती रही, पर धृति तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। जब कुछ देर बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, तो माधुरी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अपना सवाल दोहराया, मैम बताइए ना, क्या हुआ था कल और सर आपको कहाँ लेकर गए थे? क्या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया था? धृति के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी, तब कहीं जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने निगाहें माधुरी की ओर घमाई तो वो परेशान निगाहों से उसे देख रही थी। माधुरी को अपनी फिक्र करते देख, उसे यूं परेशान होते चिंता करते देखकर धृति के लबों पर मुस्कान छा गई। मैम आप जवाब देने के बजाय मुस्कुरा क्यों रही हैं? माधुरी का सवाल जब धृति के कानों में पड़ा, तब कहीं जाकर वो होश में लौटी। उसने निगाहें माधुरी की तरफ घुमाई तो वो आंखें बड़ी बड़ी किए अचरज से उसे देख रही थी। धृति की मुस्कान पल में फीकी पड़ गई। जैसा तुम और बाकी सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। न तो कल उन्हें मुझ पर कोई प्यार आ रहा था और न ही उन्होंने कल मुझे टॉर्चर किया है। माधुरी के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। धृति ने उसे कल जो हुआ सब बता दिया, फिर आगे बोलना शुरू किया, यही बात थी और कुछ नहीं। माधुरी को अब पूरी बात पता चली और सब साफ हुआ। हालांकि शुरू में अर्णव का व्यवहार जानकर माधुरी को उस पर गुस्सा बहुत आया, पर बाद में जब उसने धृति की पूरी बात सुनी तो उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ। धृति जैसे ही चुप हुई, माधुरी ने चिंता भरे स्वर में कहा, अब आप ठीक हैं? अगर पेन ज्यादा है तो मैं दवाई दे देती हूँ आपको, या फिर आप घर जाकर आराम ही कर लीजिए। वैसे भी सर ने आपको छुट्टी के लिए बोल ही दिया था। माधुरी को इतनी फिक्र करते और परेशान होते देखकर धृति ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा दर्द है पर बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं उसे। फिर ये तो हर महीने की परेशानी है, छुट्टी कब तक लेती रहूँगी? और उस इंसान की दया या एहसान नहीं लेना मुझे। माधुरी अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, उसने बस सर हिला दिया। अब मैं चलती हूँ, अगर देर हुई तो फिर वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। माधुरी ने एक बार फिर सर हिला दिया। धृति लंच पर वापस आने का बोलकर केबिन से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने माधुरी के केबिन से बाहर कदम रखा, उसका सामना कबीर से हो गया। जहाँ कबीर धृति को यहाँ देखकर चौंक गया, वहीं धृति के चेहरे पर उसे देखकर अजीब से भाव उभर आए। अगले ही पल उसने कबीर पर से अपनी निगाहें फेरते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। कबीर उसके ऐसा करने से और ज्यादा चौंक गया। कुछ पल वो अचंभित सा वहाँ से जाती धृति को देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और दरवाज़ा खोलकर केबिन में कदम रखा। माधुरी, धृति यहाँ क्या कर रही थी? केबिन में कदम रखते ही कबीर ने जब माधुरी से ये सवाल किया, तो माधुरी ने नजरें घुमाकर उसे घूरा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैम यहाँ क्यों आई थी? और तुम जानकर क्या करोगे? तुम अपने दोस्त का साथ दो, हर सही गलत काम में उसका सपोर्ट करके अपनी दोस्ती निभाओ। मैं भी अपनी दोस्त का साथ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो गलत नहीं है। और जैसे मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस जल्लाद बेरहम संगदिल दोस्त के बीच नहीं आती, वैसे ही तुम्हें भी मेरे और मेरी दोस्त के बीच आने या हमारे बीच कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माधुरी ने अपना फैसला सुनाया और गुस्से भरी नजरों से उसे घूरने लगी। उसके बोलने के लहजे को देखकर कबीर ने लाचारी से कहा, मधु, जब से धृति का किस्सा शुरू हुआ है, तुम ठीक से मुझसे बात तक नहीं करती, क्योंकि तब से मैं तुमसे नाराज हूँ और उसकी वजह तुम्हारा दोस्त है। वो ऐसे कैसे किसी मासूम लड़की से जबरदस्ती शादी करके उसे ऐसे टॉर्चर कर सकता है? माधुरी ने गंभीरता से जवाब दिया और उसके शब्दों में नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। कबीर ने अब गहरी सांस छोड़ी और माधुरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मधु, तुम नहीं जानती धृति ने क्या किया है, तो बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा गुनाह किया है धृति ने, जिसका बदला अर्णव उससे इस तरह से ले रहा है? माधुरी उसके सामने हाथ पात कर खड़ी हो गई। कबीर कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसकी हथेली को थामते हुए सॉफ्टली कहा, मधु, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, पर इतना समझ लो कि अर्णव का ये गुस्सा उसके दर्द की इंतहा है। उसने किसी बहुत खास को हमेशा हमेशा के लिए खोया है। उस इंसान की जिंदगी धृति के कारण बर्बाद हो गई और उस इंसान की मौत की वजह भी धृति है। अर्णव उसे वही लौटा रहा है जो धृति ने खुद कभी किया था। ये सब बोलते हुए कबीर काफी गंभीर लग रहा था। उसके चेहरे पर एक दर्द झलक रहा था। मधु कुछ पल खामोशी से उसे देखती रही, फिर गंभीरता से बोली, तुम श्योर हो कि जो भी तुमने कहा वो धृति नहीं किया है? तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई है? धृति अवस्थी नाम और वो चेहरा ही अर्णव के दुखों की वजह है, पर कभी कभी मुझे भी लगता है जैसे वही चेहरा और नाम होने पर भी दोनों इंसानों में जमीन और आसमान का अंतर है। पर धृति बहुत चालाक है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि किस इंसान को कैसे अपने शीशे में उतारना है। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि कोई भी सच और दिखावे में उलझ कर रह जाए। शायद इस बार भी वो एक नई चाल चल रही है।
मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे नहीं पता कि तुम किस धृति की बात कर रहे हो, पर जिस धृति को मैं जानती हूँ, उसका छल कपट, धोखेबाजी और दिखावों से कोई रिश्ता नहीं है। उसका दिल इतना साफ है कि वो गलती से भी किसी इंसान को दुख नहीं पहुंचा सकती। जान से मारना तो बहुत बड़ी बात है, पर मैं तुम पर उसकी अच्छाई और सच्चाई पर भरोसा करने का दबाव नहीं बना रही। तुम अपने दोस्त का साथ दो और मैं अपनी दोस्त पर भरोसा करूंगी। देखते हैं तुम्हारी और अर्णव की नफरत जीतती है या मेरा भरोसा। माधुरी ने दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बात कही और मुस्कुरा दी। कबीर कुछ पल उसे देखता रह गया। माधुरी का भरोसा देखकर वो कुछ और बोल नहीं सका और चुपचाप वहां से वापस चला गया। माधुरी ने गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि नफरत और विश्वास के इस जंग में जीत धृति की सच्चाई और उसके विश्वास की हो।